आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। सामान्यतः आतंकवादी गुट आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन दाइश वो आतंकवादी गुट है जो आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत बताया जाता है। सन 2020 में दाइश को आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक मजबूत आतंकवादी गुट माना गया है। आइए देखते हैं कि ये आतंकवादी गुट किस तरह से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होकर काफी धनवान हो गया। दाइश के आतंकवादी सरगना कहते हैं कि विदेशी सहायता से अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए इस संगठन का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। दाइश के प्रमुख आतंकवादियों के दावों के बावजूद इसके बहुत से विदेशी डोनर अब भी पाए जाते हैं। विदेशी सहायता से अलग हटकर अगर देखें तो दाइश ने अपनी संपत्ति बैंकों को लूटने, मादक पदार्थों की तस्करी, तेल की चोरी करके उसे सस्ते दामों में बेचने एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की कालाबाजारी करके ही एकत्रित किया है। इराक के नैनवा प्रांत के मोसिल नगर का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद दाइश ने मोसिल नगर की बैंकों को लूटकर लगभग $430 मिलियन एकत्रित कर लिए। इराक के तिक्रीत और फलूजा नगरों के अतिरिक्त वहां के 13 अन्य नगरों की 62 बैंकों को लूटकर आतंकवादी गुट दाइश ने बहुत पैसा बना लिया। उसने इराक की सरकारी और निजी दोनों बैंकों पर हाथ साफ किया। जिन वर्षों के दौरान दाइश ने इराक के कुछ क्षेत्रों और सीरिया में कुछ स्थानों पर नियंत्रण कर रखा था, उस दौरान उसने वहां का तेल बेचकर भी बहुत धन अर्जित कर लिया। कुछ वर्षों तक तो ये आतंकवादी गुट उत्तरी सीरिया के तेल के कुओं और इराक से तेल की निकासी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण किए रहा। वहां से वो तेल को तुर्की भेजकर पैसा कमाता था। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उस दौरान दाइश प्रतिदिन लगभग $10 लाख का तेल बेचा करता था। इस चोरी के तेल को दाइश अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बहुत ही कम कीमत पर दलालों को दिया करता था। ये तेल तुर्की के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तेल की मंडियों तक पहुंचाया जाता था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान दाइश ने न केवल बैंकें लूटकर और तेल चोरी करके उसे सस्ते दामों पर बेचकर पैसा कमाया, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी से ही उसने अपनी जेब भरी। उसने दक्षिणी मोसिल नगर के कुछ क्षेत्रों में मादक पदार्थों की खेती करके खूब पैसे बनाए। इसी के साथ दाइश ने कैप्टागन जैसे उत्तेजक गोलियों के उत्पादन का भी काम किया। सीरिया और इराक में कुछ स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद दाइश ने वहां के दवाइयां बनाने वाले कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और वहां से उसने नशा पैदा करने वाली गोलियां बनाने का काम शुरू किया। ये वे गोलियां हैं जो मनुष्य के शरीर और उसके मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। दाइश ने अवैध ढंग से पैसा पैदा करने के लिए सारे ही रास्ते अपनाए। इसके लिए उसने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को बेचने का भी काम शुरू किया। आतंकवादी गुट दाइश ये दावा करता है कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें मूर्ति पूजन को बढ़ावा देती हैं। अपने इसी दावे की आड़ में उसने प्राचीन धरोहरों को जब्त करना शुरू कर दिया। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी गुट दाइश ने सीरिया के भीतर खुदाई का काम करवाकर बहुत से मूल्यवान धरोहरों पर कब्जा कर लिया। ये वे चीज़ें थीं जो सीरिया की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती थी। दाइश ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिम में अल नबूक नामक क्षेत्र के चारों ओर खुदाई करवाकर कई मूल्यवान धरोहरें हासिल कीं। जिन धरोहरों को दाइश ने ज़बरदस्ती हत्या लिया था, उनकी कीमत आज़ाद बाजार में $36 मिलियन से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त फारस की खाड़ी के कई देशों के धनवान लोग आतंकवादी गुटों विशेषकर दाइश की आर्थिक सहायता करते हैं। सन 2014 और 2015 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाइश की खुलकर बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता करने वालों में से 28 का संबंध सऊदी अरब से है, जबकि 12 इराक के नागरिक हैं, 5 लोग कुवैत के नागरिक हैं तथा इनके अतिरिक्त कुछ मदद करने वाले यूएई, बहरेन और कतर से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त दाइश ने लोगों का अपहरण करके फिरौती के रूप में भी बहुत पैसा कमाया है। कार्यक्रम के इस भाग में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अफगानिस्तान से आतंकवादी कार्रवाई करने वाला गुट दाइश खुरासान पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से, जिसने इस देश को अराजकता के रास्ते पर पहुंचा दिया है, संभवतः तालिबान के लड़ाकों में दाइश खुरासान की ओर झुकाव पैदा हो जाए। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की गुप्तचर सेवा के सदस्य और अमरीका की ओर से प्रशिक्षित किए गए अफगानिस्तान के विशेष बल भी अपना काम छोड़कर दाइश खुरासान की पनाह में पहुंच जाएं। यदि ऐसा होता है तो फिर यह काम अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों, विशेषकर वहां के हजारा शिया मुसलमानों के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। इसका कारण यह है कि इन प्रशिक्षित लोगों को जब किसी के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा तो इससे उनका नुकसान अधिक होगा। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ने, जहां पर केंद्रीय एशिया के देशों, ईरान, पाकिस्तान और भारत के साथ संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक और उपयुक्त मंच तैयार कर दिया है, वहीं यही स्थिति आतंकी गुट खुरासान तालिबान के लिए पड़ोसियों पर दबाव डालने का अवसर भी पैदा करती है। आतंकवाद के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालय की हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि नवंबर 2020 तक भारत के 66 नागरिक दाइश से संबंधित हो चुके हैं, जो वापस भारत नहीं गए हैं। इसी के साथ भारतीय अधिकारी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि आतंकी गुट आतंकवादियों की भर्ती करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इंटरनेट का प्रयोग न करने लगे। दाइश खुरासान की हालिया वर्षों की आतंकवादी कार्रवाइयों की समीक्षा करने से पता चलता है कि इस आतंकवादी गुट ने ईरान को अपना लक्ष्य बनाया है। जनवरी 2024 में ईरान के किरमान नगर में शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के कार्यक्रम के दौरान दाइश की हालिया आतंकवादी कार्रवाई को उसके दो आतंकवादी तत्वों ने अंजाम दिया था, जिसमें 90 से अधिक लोग शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी और उससे पहले शिराज में शाह चिराग के मज़ार पर दाइश द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बताती है कि इस गुट ने अपनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ऐसा लगता है कि अब वो अधिक से अधिक विध्वंसक कार्रवाइयां करना चाहता है। दाइश खुरासान ने पाकिस्तान के एक आतंकवादी गुट लश्कर झंगवी के साथ मिलकर ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बलूचिस्तान में कई विध्वंसक कार्रवाइयां जाम दी हैं। इन हिंसक कार्रवाइयों में बहुत बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक शहीद और घायल हो गए। इन कार्रवाइयों से दाइश का उद्देश्य पृथकतावादी उद्देश्यों को हासिल करना है। राजनीतिक टीकाकारों का ये मानना है कि ईरान के भीतर दाइश की आतंकवादी कार्रवाइयां ये बताती हैं कि अफगानिस्तान में दाइश खुरासान की उपस्थिति क्षेत्र के एक प्रभावशाली देश के रूप में ईरान में अशांति उत्पन्न करके दबाव बनाना है। अधिकांश तकफीरी और चरमपंथी गुट ईरान को इसलिए लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि ईरान की अधिकांश आबादी शिया मुसलमानों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में वो एक शिया बाहुल्य देश है। ये गुट ईरान के एक पड़ोसी देश में उपस्थित होकर तेहरान के लिए अधिक से अधिक खतरे उत्पन्न करना चाहता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अमरीका और ज़ायनियों की योजना पर आधारित आतंकवादी गुट दाइश को अफगानिस्तान में इसलिए छोड़ा गया है ताकि उनके माध्यम से रूस का मुकाबला किया जा सके। अफगानिस्तान में खुरासान दाइश को सक्रिय करके उसके आकाओं का मकसद युद्ध और अशांति को केंद्रीय एशिया के देशों में पहुंचाकर वहां पर अशांति पैदा करना है। इस काम से वो रूस को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो पैदा होने वाली अशांति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रूस को आर्थिक दृष्टि से अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। ये काम अमेरिका के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि जब रूस अपने में भी लगा रहेगा तो इस स्थिति में अमेरिका यूरोपीय समाज में अपने प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ा सकेगा। इन हालात में संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में अपनी दृष्टिगत नीतियों को लागू करवा पाएगा। इन सारी बातों के दृष्टिगत खुरासान दाइश को नियंत्रित करने के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों विशेषकर ईरान, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और खुद अफगानिस्तान से मिलकर एक गठबंधन बनाए जाने की जरूरत है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।